نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، amazed by الأسماء الحسنى. آج اس سیریز میں سے ہم اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المحیی اور المومیت، یہ موت دینے میں کیا خوبی ہے بھائی، اس کی کیا ضرورت اور یہ کیوں، تو اس کا جواب یہی دے دیتی ہوں آپ کو کہ اگر وہ المومیت نہ ہوتا اور آدم سے لے کے آج تک پیدا ہونے والے انسان زندہ ہی ہوتے اور موت کا تصور بھی نہ دنیا میں ہوتا تو ذرا سوچئے اس دنیا کا کیا حال ہوتا، کیسے مردہ اگر پرانا ہو کے گل جائے سڑ جائے اور اس میں سے بو آ جائے اور کہاں رکھتے، اور مردے بھی نہیں وہ تو زندہ لاشیں ہیں، 100 سال 150 سال 300 سال 400 کہاں رکھتے ان کو، اور وہ کیا انسانیت پہ بوجھ ہوتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے سورۃ عبس میں آتا نا کہ اما تفا اقبرہ، اس نے موت بھی دی اور قبر بھی دی، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی نام ہمیں آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ہستی وہ ہے کہ جس نے لوگوں کو زندگی کے بعد موت بھی دی، اگر اللہ الممیت نہ ہوتا تو کوئی نہ مرتا۔ آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہوتا، اگر آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا تو ذرا ہاسپٹل کے کسی ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا لیجئے، جہاں زخموں سے جلے ہوئے لوگ، تڑپے ہوئے لوگ، حادثات میں کرشڈ باڈیز کے ساتھ کے لوگ، ان کو آپ دیکھیں، یا کسی بہت اولڈ ہوم بڑے سے بڑے میں جا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں 100 100 ڈیڑھ ڈیڑھ سوا سو سال کے بڈھے بڈھیاں ایسے مردے پڑے ہیں، ہاسپٹلس میں آپ کو اکثر یہ سین دکھتے ہیں، تو گھر والوں کو بھی اور ان کو بھی رحم آتا ہے، اور وینٹیلیٹرز پہ کھڑے ہوئے لٹائے ہوئے لوگوں کو ذہن میں لے آئیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا المومیت ہونا اتنا ہی اہم ہے جتنا المحیی ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت نہ دے تو پھر دوبارہ ایک ابدی زندگی کی طرف انسان کیسے آئے، تو کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں زندگی سے زیادہ موت پیاری ہو جاتی ہے، تو المحیی اور المومیت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے نام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آج ہم بہت سارے واقعات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مد میں دیکھیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں لغوی معنی ان دونوں کے۔ المحیی ہا یا ہے اس کا روٹ، حیون سے زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا المحیی، اور المومیت میم و اوتا سے موت دینے والا، مات یمیت موتن۔ ان دونوں لفظوں کو اگر آپ قرآن پاک کی کسی آیت میں دیکھنا چاہیں تو سورۃ البقرہ آیت 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کفر کا یہ رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہی آیت پچھلے ناموں کے ساتھ بھی میں نے کوٹ کی تھی نا، دو موتوں کے بیچ کی یہ زندگی اور پھر اس موت کے بعد ایک ابدی زندگی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ المحیی بھی ہے المومیت بھی ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کے معنی دیکھ لیجئے، تو المحیی اللہ ہی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ بظاہر ہم کچھ اور لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں، فلاں نے اس کو زندگی دی، ڈاکٹر نے اس کی زندگی بچا لی، فلاں نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا اور سو آن، یا کبھی کبھی ماں کے لیے کہتے ہیں ماں نے پیدا کیا، ماں پیدا کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے، زندہ نہیں کر سکتی، ماں کے پیٹ سے زندہ نکلے کہ مردہ یہ کس کو پتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے زندگی کا اصل سورس اس کے ہاتھ میں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ المحیی ہے تو کس کس کو زندگی عطا کرتا ہے، کیونکہ ہماری محدود سی سوچ پھر جاتا ہے تو انسان پہ چلی جائے گی، یا کسی کی بلی مر گئی تو بلی کی موت، کتا مر گیا، بھینس مر گئی، لیکن لکھیا المحیی، کس کس کو زندگی عطا کرتا ہے اور کس کو بعد میں موت دیتا ہے۔ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی تمام عاقل مخلوقات، اور عاقل مخلوقات میں انسان ہے اور جنات ہیں اور فرشتے ہیں، یہ عقل رکھنے والی، اور اسی طرح سے کچھ غیر عقل مخلوقات ہیں زندہ لیکن غیر عقل ہیں، ان کی عقل محدود ہے اپنے لیے، جیسے چیونٹیاں ہیں، کوے ہیں، اور اس طرح ہم اس کو غیر عقل اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتے، لیکن وہ اپنے ہاں بہت ہیں۔ سورۃ نمل پڑھیے، چیونٹیوں کو بھی اپنی جان بچانے کی فکر ہے، یا تو حد نملا تو چلو چلو بھاگو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے نہ دبا دے، تو ان کی اپنی باتیں۔ اس طرح چڑیاں، کوے، طوطے جو کائیں کائیں کرتے ہیں، یہ بھی تو کچھ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، رائٹ؟ بہرحال وہ عقل نہیں ہے جو کہ इंसान के पास है और जिसका दावा एक इंसान कर सकता है। इसी तरह तमाम बेजान मखलूकात। अब बेजान मखलूकात में अगर हजर और शजर और पत्थरों को ले आए तो फिर इसमें परिंदों को लाएंगे तो साइंस तो कहती है परिंदे भी जिंदा हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो बहरहाल आप सब जानते हैं परिंदे, चरिंदे, फरिश्ते, हर एक को जिंदगी देता है अल्लाह ताला। फरिश्तों का भी मामला है, वो भी पैदा किए जाते हैं। हदीस में आता है कि जिब्राइल के परों में से पानी के कतरे निकलते हैं और हर कतरा बाद में एक फरिश्ते में ढल जाता है। और दुनिया में इतने फरिश्ते हैं कि बैतुल्लाह के ऊपर एक जगह बैतुल मामूर है, एक और घर है फरिश्तों का, उसका भी वो तवाफ करते हैं। तो जिस फरिश्ते ने एक बार उसका तवाफ किया उसको दोबारा मौका नहीं मिला अभी तक। क्या खाना काबा की रौनके हैं, अल्लाह उसको दोबारा भर दे लोगों से। और हमें वो थक्के और वो राशि पसंद है, हमें खाली खाली घर अच्छे नहीं लगते अल्लाह के। अल्लाह इन घरों को अब खोल दे, अल्लाह इस रमज़ान में दोबारा हरम को खोल दे और हर मस्जिद को लोगों से भर दे और अपनी इस छोटी सी मखलूक को कुन के ज़रिए दूर कर दे इंसानियत से। और अल्लाह ताला हमें अब इस साल के रमज़ान में एक दूसरे को देखने का मौका अता फरमाए। तो बहरहाल हर चीज़ जिंदा है, पत्थरों, हजर शजर, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सेंस मौजूद है। फिर इसी तरह से अल-मुमीत अल्लाह जल्ला जलालहू वो ज़ात है जो जिंदों को मौत देता है और मौत के ज़रिए तंदरुस्त और ताकतवरों की कुव्वत को कमज़ोर करता है। ये बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा सा नोट कीजिएगा। यानी अल्लाह सुबहाना ताला कैसे, पहले बात है जिंदों को मौत देता है, फर्स्ट थिंग। चले ये तो हो गई बात, जो जिंदा थे वो मर गए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी सूरत देखिए और वो क्या है कि मौत के ज़रिए तंदरुस्तों की कुव्वत को कमज़ोर कर देता है। अल्लाह अकबर। यानी अच्छा खासा इंसान होता है और फिर उसका वक्त आ जाता है और वो भेज दिया जाता है, और इसका ऑपोजिट है दूसरा असल में। बस इतनी सी बात है, कितनी बड़ी ताकत है। आज दुनिया में किसी भी इंसान के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसके अंदर कोई इतनी ताकत होगी। इसलिए आप देखिए किसी की जान नहीं ली जा सकती। खुदकुशी इस्लाम में हराम है, सुसाइड इस्लाम में हराम है। ये सिर्फ अल्लाह का काम है, ये अल-ममीत का काम है कि लोगों को मौत दे, और ये अल-हय का काम है कि वो लोगों को ज़िंदगी दे। अगर डॉक्टर्स भी दूसरों की जान बचाने के लिए काम करते हैं तो ये बहुत पसंदीदा पेशा है, गोया कि किसी एक को बचाया, सारी इंसानियत को बचा दिया। फिर इसी तरह अल-ममीत कौन है, जिसने समंदर में रास्ता बनाकर मूसा को बचा लिया, मगर वही फिरौन को अल-ममीत बनकर डबोने वाला। बड़ा गहरा नुक्ता है, गौर से सुनिए, समझिए। मूसा बचपन में समंदर की लहरों में बचा लिए गए, माँ ने तो डाल दिया था अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करते हुए, लेकिन वो बचाने वाली हस्ती मौजूद थी ना। लेकिन उसी समंदर में फिर फिरौन, आप नोट करके देखिए, वो कहते ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो हजरत मूसा को अल्लाह ने तमाम तर फिरौनी तदाबीर के सामने जिंदा रख कर दिखा दिया कि मौत के ज़ाहरी नक्शों में ज़िंदगी अता फरमाना सिर्फ अल-हय की ही सिफत है और अल-मुही की सिफत है। इसीलिए तो अल्लाह सुबहाना तआला इस सारे वाक़ियत को जब बयान करता है तो इंसान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। और उसी फिर समंदर को फिरौन के लिए मौत का ज़रिया बनाने वाला अल-मुमीत है, तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर इसी तरह से आप देखिए फरिश्तों को ज़िंदा करना, जिन्नों इंस को ज़िंदा करना, चरिंद परिंद नबातात समुद्री मखलूकात को ज़िंदा करने वाला अल-मुही है। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا جَمِيعَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ कह दो, कह लोगो बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। महसूस कीजिए, और आप और मैं उस नबी की उम्मती हैं। वो अल्लाह के आसमान और ज़मीन की बादशाही सिर्फ उसी की है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा करता है और मारता है। फिर तुम अल्लाह पर और इसके रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ, जो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान रखता है, और इसकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। तो यहाँ आप देखिए युही व युमीत दोनों सिफात हैं, और बात यह है कि जिसे अल-मुही जिंदा रखे उसे कौन चखे। और ये वाक्य आप हजरत मूसा के बचपन के वाक्य में पढ़ लीजिए, सूरत طه آیت 38 39 میں بھی ہے، اور اسی طرح سورۃ قصص میں تو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ موسیٰ کی زندگی موجود ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سارے مکر اور ساری کوششوں کے باوجود سمندر کی موجوں میں سے بچا لیا، کیونکہ موت کے ظاہری نقشوں میں زندگی عطا فرمانا صرف المحیی کی صفت ہے. اس اوحینا الی امک ما یوحا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن، یعنی میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے، اشارہ فرعون کی طرف ہے، اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک قدرتی سی کشش تھی جو آج بھی کچھ بچوں میں ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ نین نقش بڑے خوبصورت ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ چہروں پہ کشش اتنی ڈال دیتا ہے کہ نظر نہیں ٹھہرتی، اور کچھ بہت خوبصورت فیچرز رکھنے والے بھی اٹریکشن سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے کام ہے، اس پہ کسی کو کوئی بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ بندہ نیکیوں کے قریب ہو، فطرت کے قریب ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کشش ڈال دیتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت سی چیز ہے جو آپ کئی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تو اس کا اپنا دل دے دیتا، اور فرمایا تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ دیکھیے، کیسے ماں نے دل پہ پتھر رکھ کے بیٹے کو سمندر میں ڈالا، بلکہ سورہ قصص کو پڑھتے ہوئے تو رو ہی پڑتا ہے بندہ. اللہ کہتا ہے کہ ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا، کوئی اور غم نہیں تھا سوائے اس غم کے. مراد یہ کہ جب موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا، اور اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ حفاظت سے اس کو کنارے پہ لگانا، اور یاد رکھیے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نہیں مرنے دیا نا، مچھلی کو کہا ہاتھ نہیں لگانا، دانت نہیں لگانا میرے یونس کو، پیٹ میں لے جا، نگل جا، ادھر اللہ نے دریا کو حکم دے دیا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. اور فرعون جو اس سال نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے بچوں کو چن چن کے مروا چکا تھا، قتل کروا چکا تھا، وہ در پہ تھا، لیکن موسیٰ کی ماں نے اللہ کی بات مانی، اللہ نے اس کو پیچھے نہیں ہونے دیا. اور ماں کیسی تھی، تبھی تو پھر موسیٰ ایسے تھے، تو جیسی ماں ویسا بچہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارا کچھ معاملہ کر کے دکھاتا ہے کہ میں المحیی ہوں. کیسے اس دریا کا ایک کنارہ فرعون کے باغ کے پاس سے گزرتا تھا، اور وہاں وہ صندوق جا کے کنارے پہ لگ گیا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بڑی پاک باز اسرائیلی خاتون تھی، بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئی، کیا ہو ہم تم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون کو بھی محبت آئی تھی، لیکن اس نے بیٹا بنانے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت آسیہ کی خاطر بیٹوں کی طرح پرورش کی. اور اللہ تعالیٰ ہے ہی وہ جو فرعون سے نہیں ڈرتا، وہ رب بھی کیا جو فرعون سے ڈر جائے. جس بچے کو مروانے کے لیے کتنے بچے مار دیے، اللہ نے اس کو فرعون کے ہی ٹکڑوں پہ پال دیا، یہ اللہ کی شان ہے. اور پھر محبت بھی ایسی، یہ القیت علیہ کا محبت منی کام کر گئی، کہ کئی بار فرعون نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کی، لیکن نہیں کرا سکا. کئی واقعات ہیں، آپ پڑھیں تفسیر ابن کثیر، واقعہ سے بھری بھی ہے، کیسے موسیٰ نے بچپن میں اس کی داڑھی پکڑ لی، پھر غصے میں آ گیا، ہو نہ ہو یہی بچہ ہے، لیکن وہی بات ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو یاد رکھیے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ کا محبوب جو ہوتا ہے وہ بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، پھر فرشتے جبرائیل بھی اسے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں والے فرشتے کرتے ہیں، اور پھر دنیا والے بھی اس کی محبت کے اندر مگن ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایسے گھر میں پھر بچے کو پلواتا ہے کہ جہاں خطرہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ کسی اور گھر میں پلتا تو خطرہ ہی رہتا ہر وقت کہ فرعون کے درباری نہ آ جائیں اور اس کے پولیس مین نہ آ جائیں. تو کہیے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش دیکھ لیجئے، کیسے معجزانہ پیدائش، اور دوبارہ پھر ان کا آسمان پہ جانا، یعنی پہلے تو بھیج دیا اور پھر اب دوبارہ جب آئیں گے دنیا میں، یہ المحیی ہی تو ہے. اور اس کو جتنا جانتے جائیں گے، جتنا سمجھتے جائیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور صحابہ کرام کا بڑا ایمان تھا اس بات پہ. بہت پیارا واقعہ حافظ ابن حجر نے الصحابہ، ان کی بڑی ہی معروف کتاب ہے عربی کی، اس میں لکھا ہے، عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ، آپ خود پڑھیے جا کے. आप हयात साहबा के पहलू में अगर इस नाम से साहबी को सर्च करके उसमें भी सुन लें, उनके मनाकिब हैं। कैसे हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में रूमियों से जंग के दौरान चंद मुसलमानों के साथ गिरफ्तार हुए, शाह रोम ने पकड़ लिया, यानी उस वक्त की सुपर पावर, कहने लगा या तो नसरानी बन जाओ और मैं आपको अपनी हुकूमत में शरीक कर लूंगा, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन खुजाफा ने कहा मैं तो नसरानी नहीं बनूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर देख लो, लो आतई तनी मा तमलिकु व जमी मा मलकतुल अरबु, अगर तू सिर्फ अपनी हुकूमत ही नहीं बल्कि सारे अरब की हुकूमत भी मुझे दे दे, तो मैं पलक झपकने के बराबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ सकता। यानी इन्होंने ये जुमला बोला उस बादशाह को, मैं तो ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मा फालतू। अब तो बादशाह की अना को ठेस पड़ी कि तुमने तो मेरी क्या सारी दुनिया की बादशाहतों को पीछे कर दिया। तो उसने कहा कि इनको तख्ते पे चढ़ाएंगे, ऊपर से तीर बरसाएंगे, और देख रहा है कोई चेहरे पे खौफ के आसार नहीं। फौरन उतार लिया, हुक्म दिया जाओ देग में पानी गर्म करो, खौलता हुआ तेल या पानी डाला, और जब उनको करीब लेके जाने लगे तो ये रोने लगे। बादशाह तो खुश हो गया, कहा जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, डर गए डर गए। कहा क्या हुआ, नहीं ना मरना, मान जो मेरी बात। तो इनका जुमला सुनिए, तमन नहीं तू अन्नली मियत नफ्सिन तुल्का हाकजा फिल्ला, रो इसलिए रहा हूं कि मेरी तमन्ना है कि मेरी 100 जानें होती, 100, और हर जान कुर्बानी का इसी तरह नजराना पेश करके अपने रब ताला के हजूर हाजिर हो। शाह रोम को बड़ी हैरत हुई, अब उसको लगा ये बंदा बड़े काम का, अब इसको क्यों मारूं, छोड़ो। कहने लगा मेरे सर के ऊपर एक बोसा दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहने लगे इसका मुझे कोई फिक्र नहीं। कहा मुझे नहीं, मेरे साथियों को भी छोड़ना। उसने कहा ठीक है। इन्होंने उसके सर को बोसा दिया और बादशाह ने बाकी फिर इनको और बाकी मुसलमान कैदियों को आजाद किया। हजरत उमर के पास जब ये गए और वाकया सुनाया, तो हजरत उमर ने उतर कर अपनी जगह से अपने पास बुलाकर इनके सर पे बोसा दिया। तो अब देखिए मौतों में से निकल आए। अरअल इसाबा किताब खोल के पढ़ लीजिए, बहुत ही प्यारी बुक है, उसमें ये वाकया आपको मिल सकता है। तो फिर क्या पता चला कि सहाबा का बड़ा ईमान था इस बात पे, और एक से ज्यादा वाकया था इसमें, अगर मौका हुआ तो हम बाद में भी कुछ शेयर कर लेंगे। लेकिन देखिए नमरूद का हजरत इब्राहिम को आग में डालना, और उस रब का कहना कुल ना या ना रुकूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पे, तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। और सूरत अल मोमिनून की आयत 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी युहयी व युमीत वलहु इख्तिलाफुल्लैलि वन्नहार अफला ताकिलून, और वही है जो जिंदा करता है और मारता है, और इसी के कब्जे में रात और दिन का बदलना है, तो क्या तुम नहीं समझते। सवाल देखिए अल्लाह की हस्ती है, उसके आगे कौन पर मारे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक सवाल था अल्लाह से, और वो क्या था, सूरत बकरा 260, वइस काल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता काल अवलम तुमिन काल बला वलाकिन लियतमइन कल्बी काल फखुज अरबतम मिन अत्तैर फसुरहुन इलैक इलैक सुम्मा जल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन जुज़अन हकीम। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, फरमाया और क्या तूने यकीन नहीं किया। कहा क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तसल्ली हासिल कर ले। फरमाया फिर 4 परिंदे पकड़ो और इन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक हिस्सा रख दो, फिर इन्हें बुलाओ दौड़ते हुए तेरे पास आ जाएंगे, और जान ले कि अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। तो अल्लाह सुबहान तआला ने ये करके दिखा दिया, मुर्दा परिंदों को जोड़ के दोबारा जिंदा में कर दिया। तो सवाल लिखिए कि अल मुहयी से किस को जिंदगी मिलती है। ये तो चीजें थी ना एक आम लाइफ के मानों में, लेकिन अगर आप थोड़ा इस्तियाराती मानी देखिए, जरा एक साइड का मानी, तो मुर्दा जमीन कैसे खुश्क होती है, फिर ऊपर बारिश पड़ती है, फबक पड़ती है, ऐसे लगते सब्जा उग जाता है, और मुर्दा जिस्म कैसे, इंसान कभी भूख की वजह से मुर्दा हुआ होता है, कभी बीमारी की वजह से, अल्लाह उसको दोबारा जिंदा कर देता है, और कल क्यामत के दिन तो करेगा, और फिर सबसे बड़ी बात मुर्दा कुलूब को, उन दिलों को जिंदा करेगा वो रब जो आज भी मुर्दा है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्द कोहन का चारा। आज उम्मत का जो दिल एक डोरमेंट फॉर्म में चला गया ना, अल्लाह ताला उसको जिंदा कर दे। इसलिए कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुर्दा लोग क्या जिएंगे, जीते तो दिल वाले हैं। फिर इसी तरह सूरह आल इमरान 156 में आता है, वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को खूब देख रहा है, यानी उसके इख्तियार में सब कुछ, वो जानता है, उसको सब कुछ पता है, वो देख भी लेता है और जानता भी है। तो गोया कि उससे इंसान अपने आप को दूर नहीं कर सकता, उसके हाथ में है सब कुछ। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल मुहयी और अल मुमीत दोनों को जोड़ लीजिए तो मौतो हयात का मालिक। सूरत मुल्क के शुरू पे क्या आता है, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। नोट करें, मौत और जिंदगी को पैदा करने वाला मालिक भी है। ज़ाहिर है जो किसी चीज़ को पैदा कर ले, बना दे, उसका फाउंडर हो, तो क्या फिर वो उसके साथ अपना बाकी कंट्रोल नहीं रखता होगा। फिर दूसरी बात ये कि अल मुहयी ने पहली दफा भी जिंदगी दी, मौत भी वही देगा, और दोबारा भी जिंदगी कयामत के बाद वही देगा। तो आप कह लीजिए कि अल मुहयी दो दफा जिंदगी देगा, एक तो दे चुका हमें आपको, और एक मरने के बाद दोबारा देगा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो और भी दफा दे सकता था, उसका इख्तियार है हर चीज पे। सूरत रोम 27 लीजिए, कुरानी आयत की रोशनी में देखिए इस नाम को, वहुवल्लज़ी यब्दुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुव अहवनु अलैह। वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है फिर इसे दोबारा पैदा करेगा। ये तो इस पर बहुत आसान है। लोग सोच सकते हैं बड़ा मुश्किल है, हाँ इतने लोग कैसे करे, इतनों को बारी बारी लेना छोड़ना। अल्लाह कहते हैं इट्स वेरी इजी। और अहवन जो है ना, अफअल तफदील का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री। हॉन कहते हैं आसानी को, अहवन बहुत ही आसान है। यसरनी का, हॉन का, इसका फर्क होता है दोनों में, यानी ये ज्यादा बड़ी बात है। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप अल्लाह ताला के इस नाम के ऊपर मजीद गौर व फिक्र करते जाते हैं ना, तो आपका दिल खुलता जाता है, खुलता ही जाता है। असलाफ ने इस नाम को कैसे समझा और उनका इसके बारे में क्या मामला था, अगर इसको देखना चाहें तो कुछ अकवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जुज्जाज कहते हैं कि अल मुहयी वो है कि जिसने जिंदगी पैदा की, इनको जिंदा किया या मुर्दा जमीन को आबाद करके जिंदा किया, और मुर्दा कुलूब को दीन की रोशनी से रोशन किया, यानी एक जाहरी माने और एक मानवी माने, यानी अल मुहयी इंसानों को और मखलूकात को भी जिंदगी देता है और जमीनों को भी जिंदा कर देता है, और इसी तरह मुर्दा दिलों पर वही का पानी डालकर अल्लाह सुबहान तआला मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देता है। कि आपको हर दिन ये नहीं महसूस होता, जैसे कुमलाई हुई जमीन के ऊपर बारिश पड़ती है तो हर चीज धुल जाती है। चंद दिन पहले पाकिस्तान में बारिश हुई तो साथियों ने भेजा, देखे सारे पत्ते धुल गए, सब कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सच तो यही है कि वो हर चीज पे कादिर है। और ये बात सूरत हदीद की आयत 57 में भी देखिए, एलम अन्नल्लाह युहयिल अर्दा बादा मौतिहा قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ। खूब जान लो कि अल्लाह जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है, हमने निशानियां तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम अकल से काम लो। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अकल से काम लें। फिर आप देखिए कि अल मुहयी जमीन की जिंदगी और मौत को कैसे हमारे सामने लाता है, साल में दो बार, फोर सीजन्स, बड़ा मारूफ लफ्ज है। बहार में पौधों और दरख्तों का फूटना, अब आगे वाले दिन आ रहे हैं, दिन ब दिन नॉर्वे में हर चीज ऐसे लगता है जैसे फास्ट फॉरवर्ड के बटन पे है, जैसे नमाजों के वक्त आप देख रहे हैं जंप करते करते हर दिन एक हफ्ते में आधा पौना घंटा आगे पीछे हो जाती है चीज। इसी तरह पौधे, फसलें, एक दिन में आप देखेंगे तो सूखी टहनी, दूसरे दिन देखे बूर से भरी हुई, दो दिन के बाद आके देखे पूरा दरख्त पत्तों से भरा होता है। ये अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से एक बात है। तो बहार भी आती है, फिर जमीन का सब्जा और फसलें हैं, और खिजां आती है तो मौत की एक दलील है, ऐसे लगता है कि दरख्त के सारे पत्ते ही मर गए, जैसे किसी माँ के सारे बच्चे ही चले गए उसकी आंखों के सामने। और ये मंजर पेश किया जाता है सूरत फुसिलत आयत 39 में, वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ खाशियतन फइज़ा अंज़लना अलैहा अल्माअ इहतज़ज़त वरबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता इन्नहु अला कुल्ली शयइन क़दीर। और इसकी निशानियों में से एक ये है कि तू जमीन को दबी हुई यानी बंजर देखता है, फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो वह लहलहाती है और फूलती है, बेशक वो जिसने इसे जिंदा किया यकीनन मुर्दों को जिंदा करने वाला है, यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। इस दफ़ा आप महसूस कीजिएगा, हर जगह ही दुनिया में इस वक्त बहार का मौसम करीब है। कुछ जगह तो आ चुका और गर्मी आ गई, लेकिन हमारे मुल्कों में अभी थोड़ी सी इसमें देर है। तो बहरहाल पहली बात तो ये समझिए, फिर अगली बात लीजिए। अल मुही कौन है? वो जात जो मुर्दा नुतफे को जिंदा करता है, फिर इसमें से जिंदा जान निकालता है और बोसीदा जिस्मों को इनकी अरवाह दोबारा लौटा कर क़यामत के दिन जिंदा करेगा। जी, अल मुखी हुवल्लज़ी युखरिजु नुतफतल मैतता फयुखरिजु मिन्हन नसमतल हय्यता व युखरिजुल अजसामल बालियता बिआदतिल अरवाही इलैहा इंदल बास। कैसे एक पानी के कतरे को अल्लाह ताला जिंदगी में बदल देता है। आप देखिए कि इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल देखें, पानी का कतरा, फिर नुतफा, फिर अलका, फिर मुदगा, फिर हड्डियां, फिर हड्डियों पे गोश्त, और फिर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन शक्लो सूरत से अल्लाह ताला नवाज देता है जो उसके हाथ में। और अगर इसको समझना है तो सूरत हज की आयत नंबर 5 ले लीजिए। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैब मिनल बासि फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा अलका सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुदगतिन मुहल्लकतिन व गैर मुखल्लकतिन लिनुबय्यिना लकुम व नुक़िर्रु फिल अरहामि मा नशा मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ्ला ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر। कैसे अल्लाह ने एक एक चीज को खोल के बयान किया। तर्जमा देखिएगा, लोगों अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है, सोचिए जरा किसी को शक तो नहीं, तो सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून बस्ता यानी जमा हुआ खून, फिर गोश्त के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक्शा भी था, ये हम तुम पर जाहिर कर देते और हम जिसे चाहते हैं ठहराए हुए वक्त तक रहम मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। तुम में से बास तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बास बेगरज उम्र की तरफ फिर से लौटा दिए जाते हैं कि वो एक चीज से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाए। तू देखता है कि जमीन बंजर और खुश्क है, फिर हम इस पर बारिशें बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती है। तो कैसे खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इसको हमारे सामने रख दिया। इसी तरह अल्लामा इब्ने कसीर क्या कहते हैं इस नाम के बारे में, कहते हैं कि इसके हाथ में है पैदा करना, यानी अल्लाह के लिए कुछ भी तो मुश्किल नहीं। इसी की तरफ तमाम उमूर लौटाए जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहता और ना कोई मरता है, मगर इसी के इरादे और मुकर्रर करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ाई जाती और ना कम की जाती, मगर इसी के फैसले और मुकर्रर करने से। जी, अल मुमीत व बियदिहिल खल्कु व इलैहि युरजुल अम्रु व ला यहया अहद व ला यमूत अहद इल्ला बिमशयतिहि व क़दरिहि ولا يزاد في عمر احد ولا ينقص منه شيء الا بقضائه وقدره। तो बात तो सच है, इंसान बेबस हो जाता है इन चीजों को पढ़ते सुनते कि वाकई बात तो सच है, और अल्लाह सुभान व तआला तो जिंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर फरमा चुके हैं। आपका मेरा वक्त मुकर्रर है, और लिखिए कि अल्लाह के हाँ इंसान की सांसों की तादाद में है जिंदगी, यानी इंसान की उम्र सालों को गिरे लगाने में नहीं, महीनों में नहीं, सिल्वर जुबली नहीं है और एनिवर्सरीज नहीं है, एक एक सांस की सूरत में अल्लाह ने आपकी मेरी जिंदगी लिखी हुई है। कितने सांस लेने इस दुनिया में जाकर और मौत की हिचकी आ जाए उसके बाद, फिर इसका रिस्क इल्म और उसकी औलाद का मुकर्रर करना। अल्लाह सुभान व तआला कैसे ये सारे कामों को मैनेज करता है, ये उसी का काम है। और सूरत मुल्क आयत 2 ले लीजिए। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है, और वही सब पर गालिब है बेहद बख्शने वाला। तो क्या पता चला, ये सारा खेल आजमाइश के लिए, आपकी मेरी आजमाइशों के लिए मालिक ने ये सब कुछ कर दिया और इसकी जरूरत थी, और उसने जो किया वो खूब किया।